नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कल शल्य का और कर्ण का खूब संवाद चल रहा था, अभी शल्य का संवाद पूरा नहीं हुआ। वो एक दूसरे को खूब आरोप प्रत्यारोप से प्रताड़ित कर रहे थे। शल्य ने तो पहले कह दिया कि मैं कुछ भी कहूंगा उसको सुनना पड़ेगा। कर्ण कहता है कि इसी प्रतिज्ञा के कारण से मैं तुम्हारी बात सुनता हूं, नहीं तो बाबा तुम्हारा तो मुंह ही नहीं देखूं। संजय ने कहा, अब आगे कहते हैं, कर्ण की बड़ी कठोर बातें सुनकर राजा शल्य ने कर्ण से कहा कि कर्ण एक कुल कलंक, कर्ण सुनो, मैं तुम्हें एक दृष्टांत सुनाता हूं। एक बार समुद्र के तट पर किसी धर्म प्रधान राजा के राज्य में एक धनधान्य संपन्न वैश्य रहता था। वह यज्ञ याग आदि करने वाला, दानी, क्षमाशील और अपने कर्मों में स्थित पवित्र आत्मा, समस्त जीवों पर दया करने वाला था। उसके कई अल्प वयस्क पुत्र थे, छोटी उम्र वाले पुत्र थे। वे एक कौवे को अपना झूठा भात, दही, दूध और खीर आदि दिया करते थे। छोटे छोटे बच्चे कौओं से तमाशा करते। उस उच्चिष्ट भोजन को खाखा करके एक कौवा खूब हृष्टपुष्ट हो गया और घमंड में आकर अपने जितने कौवे अथवा और पक्षी होते उन पक्षियों का बड़ा अपमान करता था। एक बार उस समुद्र तट पर गरुड़ के समान लंबी लंबी उड़ान भरने वाले मानसरोवर के हंस आ गए। तब उस घमंडी कौवे ने कहा, हंसों, हम तुमसे उड़ने में प्रतियोगिता करना चाहते हैं, मैं तुमसे ज्यादा उड़ सकता हूं। हम तो कौवे से कहा हंसों ने, अरे हम मानसरोवर के रहने वाले हंस हैं, तुम पृथ्वी पर थोड़ी जगह उड़ने वाले हो, हम सारी पृथ्वी पर उड़ते फिरते हैं, हमारी उड़ान में तुम्हारा कोई मुकाबला नहीं हो सकता। तुम तो एक कौवा हो, हम हंस हैं, इसलिए तुम्हारी हमारी बराबरी नहीं हो सकती। हंसों की बात सुनकर के कौवे ने कहा, तुमको क्या पता, मैं 100 प्रकार की उड़ाने जानता हूं। मैं उड्डीन, अवडीन, प्रडीन, डीन, निडीन, संडीन, तिरियगडीन, विडीन, परिडीन, पराडीन, अभिडीन, महाडीन, निर्डीन, अतिडीन, संडीन, डीनडीन और संडीनो डीनडीन और डीन विडीन, संपातडीन, समुदीश, व्यतिरिक्त, गतागत, प्रतिगत इत्यादि इत्यादि उड़ने की प्रक्रियाओं को जानता हूं। एकदम उड़ते उड़ते धीरे धीरे जाते, एकदम नीचे चला जाऊं, नीचे जाकर के एकदम तिरछा चला जाऊं, इधर चला जाऊं, ऊपर चला जाऊं, अनेक प्रकार की मेरे पास शक्तियां हैं। हंस ने हंस करके एक कौवा है, तुम तो 101 प्रकार की उड़ान जानते हो, तुम जानो, हम तो एक प्रकार की गति जानते हैं, क्या कि उड़ना चाहिए, और उस उड़न में तुम हमारा मुकाबला कर नहीं सकते। तुम अपना काम करो, हम अपना काम करें। क्या नहीं, ऐसे कैसे होगा, आओ आपको मेरे साथ उड़ान भरनी होगी। कि देखो कौवे, तुम्हारे बड़ी मुश्किल हो जाएगी, मैं इतनी उड़ान जानता हूं, फिर हमारे कैसे मुश्किल होगी। तो ठीक है चलो। तो कौवे ने क्या किया कि चलो उड़ान भरी। उड़ान भरते ही कौवे तो एकदम तेज उड़ने लगा, हंस अपने धीरे 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 गति से चलने लगा। और कौवे थे वो देखने, अरे वाह, कौओं की लाज बचाने वाला, कौओं का यश बढ़ाने वाला ये कौवा, देखो कितना आगे निकल गया, कितना आगे निकल गया। आगे जाकर कौवा जल्दी थक गया और हंस अपनी गति से चल रहे थे। समुद्र के ऊपर थक जाने के कारण कौवे को कहीं रुकने की जगह नहीं, विश्राम की जगह नहीं। वो वहीं पर अपना थड़फड़ाने लगा। हंस ने कहा, क्यों जी, तुमने तो अपनी अनेक प्रकार की उड़ानों का बखान किया था, अब उड़ो, क्या बात है? भाई हंस, हम तो कौवे हैं, हम तो झूठे ही काव 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 करते रहते हैं, मेरे तो अब प्राण कंठ में आ रहे हैं, तुम मुझे किसी प्रकार इस जल से बचाओ, नीचे गिर जाऊंगा, मर जाऊंगा, ऊपर कोई जगह नहीं, कहां ठहरूं, मेरी बहुत दुर्दशा होगी। अरे कवे महाराज, आप तो 101 प्रकार की उड़ान जानते थे ना, फिर थक कैसे गए इतने जल्दी? कवे ने कहा, क्या करूं हंस, झूठा खाखा करके झूठा बोलने लग गया, अपने को गरुड़ के समान समझने लग गया। मैंने छोटे मोटे कौओं को हराया तो मैंने देखा कि मैं सबको हरा दूंगा, अब मैं तुम्हारी शरण में हूं, मुझे जैसे तैसे बचाओ, मेरे प्राण निकलने वाले हैं, और यदि अब मैं अपने देश में पहुंच गया तो कभी किसी का भी निरादर नहीं करूंगा, एक बार मुझे जीने का मौका दो। हंस ने देखा, अच्छी बात है। हंस उसके पास नीचे उतरा, समुद्र के नीचे, समुद्र के ऊपर वहां पानी पर, और अपने पंजे से कौवे को लेकर कहा, तुम मेरे पीठ पर बैठ जाओ और पंजों से मेरी पीठ को पकड़े रहना, और जहां से उड़े थे वहां ले जाकर उसको उतार दिया। और तब वो कौवा उसके बाद किसी प्रकार से किसी को कुछ नहीं कहता था। कर्ण, मुझे तो तू उस कौवे के समान लगता है, तू हस्तिनापुर में दुर्योधन का, धृतराष्ट्र के और पुत्रों का जूठन खा खा करके पला है और अपनी शेखी बघारता है, इस विराट नगर में द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, भीष्म और भी बड़े बड़े योद्धा हैं, वे अर्जुन का काम तमाम करने में डरते हैं और तुम कौवे की तरह काव काव करते हो। जब संग्राम भूमि में अर्जुन ने तुम्हारे भाई का वध किया था, उस समय कौरव योद्धाओं के सामने सबसे पहले तुम ही तो भागे थे ना, द्वैत वन में गंधर्वों के आक्रमण करने पर सारे कौरवों को छोड़कर पहले तुम्ही ने पीठ दिखाई थी ना, उस समय अर्जुन ने चित्र सेनादि गंधर्वों को युद्ध में परास्त करके दुर्योधन और उसकी रानियों को छुड़वाया था ना, भूल गए? परशुराम जी ने राजाओं की सभा में कृष्ण और अर्जुन का जो पुरातन प्रभाव कहा था वो तुमको याद है ना, वो हस्तिनापुर की सभा में ही कहा था। इसके सिवा भीष्म और द्रोण भी राजाओं के आगे इन दोनों की अवैधता को बता रहे थे, तुमने सुना ना? मैं तुम्हें ऐसी कौन कौन सी बातें बताऊं जहां तुम्हारी और अर्जुन की कोई बराबरी भी हो सके? मेरा तो एक विचार है, यदि हो सके तो अभी भी समय है। कर्ण, ज्यों ही अर्जुन और कृष्ण का रथ दिखाई दे, तुम मुझे आदेश दो कि शल्य, मेरा रथ कृष्ण के सामने ले चलो, और उसके बाद कहो, शल्य मैं उतरता हूं, तुम भी रथ से उतरो और मेरा हाथ पकड़ो, और कृष्ण तुमको अपने पास आया देखेंगे, वे रथ से नीचे उतर जाएंगे और तुम उनके चरणों में अपना शीश नवा दो और कह दो कि यह सूत पुत्र कर्ण आपके चरणों में शरणागति के लिए आया है। है हिम्मत? यदि इस काम में हिम्मत नहीं है तो फिर तुम किसी प्रकार कृष्ण और अर्जुन को परास्त नहीं कर सकते, शरण में नहीं जा सकते, युद्ध क्या करोगे? महात्मा अर्जुन और कृष्ण के सामने इस संसार में कौन श्रेष्ठ होता है? कितनी बढ़िया बात कही संजय ने। कहा, महाराज जब ये बात कर्ण ने सुनी तो कर्ण का अंदर से कुछ हृदय हिल गया, कहने लगा, शल्य अर्जुन का रथ हांकने वाले कृष्ण के बल और अर्जुन के दिव्यास्त्रों का जैसा मुझे पता है ऐसा तुम भी नहीं जानते। तब भी उन दोनों के साथ मैं बेधड़क होकर संग्राम करूंगा। परंतु क्या कारण? मुझे परशुराम जी का शाप याद आ रहा है। परशुराम जी तुम्हारे गुरु है, उन्होंने तुमको शाप दिया या वरदान? मुझे शाप दिया। वे आज मुझे बहुत संतप्त कर रहा है। पूर्व काल में मैं जब बहुत छोटा था, दिव्य अस्त्रों की प्राप्ति के लिए मैंने ब्राह्मण का वेश बनाया, परशुराम जी के यहां रहा। परशुराम जी ने मुझसे पूछा, कौन जाति में हो? मैंने कहा मैं ब्राह्मण हूं। बड़े प्यार से उन्होंने मुझे आश्रय दिया और मुझे कई प्रकार के शस्त्र दिए। उस समय अर्जुन का हित करने के लिए स्वर्ग से इंद्र एक बहुत विलक्षण ढंग का कीड़ा बनकर आया। मेरे गुरुजी मेरी जांग पर सिर रख के सो रहे थे और वो बेडोल अदृष्ट अश्रुत कीड़ा, ऐसा कभी देखा नहीं सुना नहीं, वो कीड़ा धीरे धीरे मेरी ओर आ रहा था। वो इंद्र ही था और उसने आकर मेरी जांग में जोर से प्रहार किया, मुझे काटा, लेकिन मैं तटस्थ रहा। मैंने देखा यदि मैं हिलूंगा तो गुरु की नींद टूट जाएगी। मैंने उसके दर्द को खूब गहराई से सह लिया। थोड़ी देर बाद मेरे शरीर का यूं खून बहने लगा। इधर गुरुजी का निद्रा भंग होना हुआ और देखते ही उन्होंने कहा, अरे तू ब्राह्मण है? नहीं नहीं नहीं, ब्राह्मण नहीं हूं। नहीं, तू ब्राह्मण नहीं है, ठीक ठीक बता, तू किस जाति का है, सच्ची बता। क्यों महाराज, मेरी जाति पर आपको संदेह क्यों हुआ? संदेह इसलिए हुआ है कि ब्राह्मण इतना दर्द को सह नहीं सकता है। तूने बड़ी कठोरता से इसको सहा है, बोल तू किस जाति का है, सच्ची बताना, नहीं तो मैं शाप दे दूंगा। मैं गुरुजी से डर गया। मैंने हाथ जोड़ के कहा, महाराज मैं सूत पुत्र हूं। मेरी बात सुनकर परशुराम जी क्रोध में भर गए और मुझे शाप दिया कि अरे सूत, तू मुझे सूत बनकर के आकर के बोला होता तो भी मैं तुझे इसी प्यार से शस्त्र विद्या सिखाता। झूठे, ब्राह्मण का वेश बनाकर और फिर मेरे से तूने ब्रह्मास्त्र ले लिया। जाओ, मैं शाप देता हूं, काम पड़ने पर तुम इस ब्रह्मास्त्र को भूल जाओगे। इसी कारण शल्य मुझे संग्राम में ब्रह्मास्त्र याद नहीं आता है। भरत वंश में उत्पन्न हुआ यह अर्जुन बड़ा पराक्रमी है, भीषण है, सबका संहार करने वाला है और आज तो हमारा और अर्जुन का बहुत भयंकर युद्ध होगा। अनेकों क्षत्रिय वीरों को संतप्त करने वाला होगा। अर्जुन सत्य प्रतिज्ञ है, परंतु मैं उसके साथ अवश्य संग्राम करूंगा और उसे मृत्यु के मुख में डालकर रहूंगा। मुझे कई प्रकार के अस्त्रों का ज्ञान है, अर्जुन को मैं धराशायी कर दूंगा। शल्य, संग्राम भूमि में अर्जुन के साथ जय या मृत्यु, इन दोनों में से किसी एक को चुनूंगा। मैं युद्ध में भागने का विचार नहीं करता हूं। तुम कहते हो जाकर कृष्ण की शरण हो जाओ, ये मेरे से कभी संभव नहीं है। मेरे सिवा कोई ऐसा वीर भी नहीं है जो अर्जुन के साथ अकेला युद्ध कर सके। शल्य, मुझे लगता है कि तुम बहुत बलहीन हो। तब एक मामूली अर्जुन के थोड़े से एक बल को आप इतना बढ़ा चढ़ाकर कहकर तुम मुझे हतोत्साहित करते हो। संग्राम भूमि में उसके पराक्रम से प्रसन्न होकर क्षत्रियों की सभा में मैं वर्णन करूंगा कि अर्जुन कैसा था। क्योंकि अर्जुन मेरे से मरेगा तो उसका वर्णन तो मैं करूंगा, तुम बीच में क्यों बोलते हो। शल्य मैं तुम्हें क्षमा कर रहा हूं, मेरा तो तुम्हारे साथ सरलता का बर्ताव ही रहेगा, तुम मित्रद्रोही हो। कोई आदमी 7 कदम एक साथ चला जाता है तो वो उसका मित्र हो जाता है, तुम मेरा रथ खांकते हो और बड़ाई तुम पांडवों की अर्जुन की करते हो। राजा दुर्योधन रणभूमि में आ रहे हैं, मैं उनकी विजय की इच्छा से यहां आया हूं, किंतु तुम अर्जुन की गुणगाथा गा रहे हो। वास्तव में बताओ तो सही, तुम्हारा अंदर से भीष्म और द्रोण की तरह पांडवों से प्रेम है क्या? मुझे पहले ही बता दो। यदि अंदर से तुम पांडवों से मिले हुए हो तो मुझे तुम्हारी कोई आवश्यकता नहीं। आज विजय प्राप्त करने के लिए मैं अर्जुन पर अपना अप्रमेय और अजेय ब्रह्मास्त्र छोड़ूंगा, परंतु मुझे एक भय है। मैं एक बार अपने शस्त्र का अभ्यास कर रहा था, उस समय एक होम धेनु के बछड़े को मार दिया। होम धेनु माने यज्ञ की गाय, जिसके दूध से घी केवल उसी का ही यज्ञ में ही उसका प्रयोग हो तो होम धेनु कहलाती है। होम धेनु के बछड़े को यो अनजान में तीर चला रहा था, बछड़ा आ गया, बछड़ा मर गया। बेचारा बछड़ा निर्जन वन में चर रहा था, मुझे ध्यान था नहीं, मैंने उसे मार दिया, वो मेरे बाण से मर गया। तब उसका मालिक ब्राह्मण आया और आकर के उसने मुझे डांटा, इस निरपराध हेमधनु के बच्चे को तुमने मारा है, मैं तुम्हें श्राप देता हूं, संग्राम में लड़ते लड़ते तुम्हारा रथ का पहिया पृथ्वी के एक गड्ढे में फंस जाएगा और तुम भयंकर आपत्ति में फंस जाओगे। मैंने कहा, ब्राह्मण देवता मेरी बात तो सुनते, तुम्हारे तो बछड़े का नाश हुआ, मेरा तो यहां सब कुछ नष्ट हो गया। नहीं, एक बछड़े को तुमने मारा है, मैं तुम्हें प्रेम से कैसे बात कर सकता हूं। ब्राह्मण के उस प्रबल शाप से मुझे आज भी भय बना हुआ है। उस ब्राह्मण को मैंने कहा, ब्राह्मण तेरे को मैं 1000 गाय दे दूं, 600 बैल दे दूं, पर ब्राह्मण का कोप शांत नहीं हुआ, जाने वो ब्राह्मण कौन आया था। मैंने उसको कहा कि मैं पूरा घर बार तुझे दे दूं, तुझे मेरे वजन के बराबर सोना दे दूं, तुझे हीरा मोती दे दूं, लेकिन वो ब्राह्मण तो टस से मस नहीं हुआ। उल्टा ब्राह्मण ने कहा, सूत पुत्र तू मेरे मिथ्या भाषण को सिद्ध करके नरक में भेजना चाहता है। ब्राह्मण लोभवश भी अपनी बात को पीछे सिरकाने वाला नहीं होता। लोक में जो कोई भी मेरी बात को मिथ्या करता है तो वो ब्राह्मण नरक में जाता है, इसलिए मुझे लालच मत दीजिए। इस प्रकार ये मैंने तुमको अपने प्रसंग सुनाए हैं। मैं जानता हूं शल्य, इन प्रसंगों को सुनकर के तुम मेरी अंदर से खिल्ली उड़ाओगे। खैर, हो गई सो हो गई बात, तुम मेरे साथ स्नेह करो और आगे चलो। दुर्योधन का काम है, मेरे ऊपर उसकी जिम्मेवारी है। मैं तुम्हारे कठोर वचनों को क्षमा करता हूं, किंतु मित्र के साथ द्रोह करना पाप है, इसी से अब तक तुम बचे हुए हो, नहीं तो शल्य मैं तुम्हारा सिर उड़ा देता। शल्य ने कहा, वाह कर्ण, दुबकते छिपकते भी हो, डरते भी हो और बहादुरी भी दिखाते हो, ऐसा बकवास करने वाला मैंने अपने जीवन में तुम्हारे अलावा किसी योद्धा को नहीं देखा। मद्रराज के ऐसे कठोर शब्द कहने पर कर्ण ने कहा, मद्रराज मेरी बात को सुनो, तुमने कौवे और हंस की कथा सुनाई और हमने महाराज धृतराष्ट्र के पास से कुछ एक बात सुनी है। एक बार उनके महल में कई ब्राह्मण अनेकों अद्भुत देशों और प्राचीन वृत्तांतों का वर्णन कर रहे थे। एक ब्राह्मण था, उसने कहा कि महाराज मैं वाहिक और मद्र देश जाकर आया हूं, वहां के देशों की कथा सुनो। हिमालय, गंगा, सरस्वती, यमुना और कुरुक्षेत्र से बाहर तथा सिंधु और उसके पांच सहायक नदियों के बीच में जो स्थित है वह वाहिक देश धर्म बाह्य है, अपवित्र है, उस देश में कभी नहीं रहना चाहिए। अपना ही देश पवित्र है। मैं एक किसी काम के लिए वाहिक देश में गया, वहां लोगों के आचार विचार मैंने जान लिए। वहां शाकल नाम का नगर, आपका नाम की नदी, वहां झरती नाम के वाहिक रहते थे। उनका चरित्र अति निंदनीय है, सभा में हम उसका वर्णन कर नहीं सकते हैं। बड़े दुष्चरित्र, संस्कारहीन, दुरात्मा, वर्ण संकर और धर्म भ्रष्ट लोगों से वो वाहिक देश पोषित हो रहा है। ये बात लोगों में प्रसिद्ध है। एक विद्वान ब्राह्मण ने कहा था कि वाहिक लोग काठ और मिट्टी की बनी हुई कुंडियों में भोजन करते हैं, उनमें शराब लिपटा रहता है, कुत्ते उन बर्तनों को चाटते रहते हैं तो भी उनमें खाते समय उनको तनिक भी घृणा नहीं होती। वे लोग भेड़ का दूध पीते हैं, ऊंटनी का दूध पीते हैं, गधी का दूध पीते हैं तथा उस दूध के द्वारा दही जमाते हैं, मक्खन निकालते हैं, छाछ बनाते हैं और फिर उसको खाते पीते काम में लेते हैं। ऐसे वे महाभ्रष्ट और धर्म से च्युत रहने वाले हैं। इसी प्रकार दूसरे ब्राह्मण ने बताया कि कारस्कर, माहिशी, कालिंग, केरल, कर्कोटक, वीरक और दुर्धर्म नामक देश ये भी त्याग करने लायक होते हैं। कई ब्राह्मणों ने बताया प्रस्थल, मद्र और गांधार, आरट, खश, वसाती, सिंधु और सौवीर देश प्राय निंदित और अपवित्र माने गए हैं। पांचाल देश के लोग वेदों का अध्ययन करते हैं, कुरु देश के निवासी धर्म का आश्रय लेते हैं, मत्स्य देश के लोग सत्यवादी और सूरसेन निवासी यज्ञ करने वाले होते हैं। ये अपना देश है, ये कुरु जंगल देश है, ये बड़ा पवित्र है। दक्षिण के लोगों का बर्ताव शूद्रों के समान होता है और उसमें मद्र देश के वाहिक और मद्र देश के मनुष्य तो पूरे गंवार होते हैं। वे किसी रथी का मुकाबला नहीं कर सकते। शल्य, तुम मद्र देश के ही तो होना, मद्र देश तो सारी पृथ्वी के सब देशों के मल के समान है। ऐसी जबान आइंदे मेरे सामने मत निकालना, मैं तुम्हारी हर पोल को जानता हूं और देखना आज मेरा पराक्रम, कृष्ण और अर्जुन को मार दूंगा। शल्य ने कहा कभी तुम क्या बात बोलते हो और कभी तुम क्या बात बोलते हो, तुम्हारी बात का कोई अर्थ नहीं निकलता। कर्ण, शूरवीरता भी बताते हो और अपने आप को बड़ा अच्छा भी बता रहे, तुम कौन से देश के हो, अंग देश के हो, तुम इतने अपवित्र हो, इतने अपवित्र कि उस दिन रणभूमि के अंदर भीष्म जी ने अतिरथियों की जहां गणना हो रही थी तुमको तो रथी तक नहीं माना, कहा कि अर्धरथी निकालो इसको हमारी सेना के बाहर। क्यों तुमको क्यों बाहर निकाला, कि तुम बहुत अपवित्र विचारों के, अपवित्र देश के, अपवित्र स्थान के हो। धार्मिक लोग सब जगह रहते हैं, अधार्मिक लोग भी बहुत जगह रहते हैं, इसलिए किसी एक जगह के धर्म अधर्म को लेकर पूरे देश को दोषित नहीं किया जा सकता। कारण दूसरों के दोष बताने में सभी लोग बड़े प्रवीण होते हैं लेकिन अपने दोषों का पता ही नहीं रहता है। अपने दोष जानते हुए भी वे ऐसे भोले रहते हैं मानो उनको कोई खबर ही नहीं है। कर्ण का और शल्य का ही विवाद हो रहा था, दुर्योधन को पता चला ये दोनों आपस में तरह तरह से विवाद कर रहे हैं, उलझ रहे हैं। दुर्योधन दौड़ा दौड़ा आया और कहा कर्ण तुम मेरी तरफ विचार करो, तुम क्यों शल्य से इस प्रकार से हर बात का जवाब सवाल करते हो। शल्य से कहा महाराज आपके सामने हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता हूं, मैंने कर्ण के कहने के अनुसार आपको सारथी बनाया है, आप कर्ण की विजय में सहायता देंगे तो उसमें मेरी विजय होगी। तब राधे कर्ण ने हंसकर शल्य को पुनः कहा कि शल्य जी रथ को आगे बढ़ाइए। कर्ण ने पांडवों का अनुपम व्यूह देखा, धृष्टद्युम्न उस व्यूह की रक्षा कर रहा था, कर्ण सिंह के समान गर्जना करता था, बड़ी भारी युद्ध की तैयारी हुई और पांडव सेना का संहार करते हुए कर्ण ने राजा युधिष्ठिर को अपने दाहिने भाग में खड़ा कर दिया। धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय, राधा नंदन कर्ण ने पांडवों और धृष्टद्युम्न आदि महान धनुर्धरों का सामना करने के लिए कितना अच्छा व्यू बनाया होगा और उसको देखकर मेरा प्रिय पुत्र दुर्योधन कितना प्रसन्न हुआ होगा। उस व्यू के अगल बगल आस पास आगे पीछे कौन कौन खड़े थे और पांडवों ने मेरे पुत्रों के मुकाबले में कैसा व्यू रचा था। इस युद्ध को अभी सुनकर के मेरा चित्त बहुत प्रसन्न हो रहा है। बताओ अर्जुन उस समय कहाँ थे? कर्ण ने युधिष्ठिर पर चढ़ाई कर दी और अर्जुन वहां पास में नहीं तो कहीं दूर होंगे, कहाँ थे मुझे बताओ। संजय ने कहा, महाराज ज्यादा प्रसन्न होने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि युद्ध के कुछ क्षणों में कभी कोई हारता गिरता पड़ता भागता बसता बचाता चलता ही रहता है, परंतु इस समय में युद्ध बड़ा भयंकर हुआ। अर्जुन संसप्तकों के साथ बड़ा व्यूह बनाकर युद्ध करने वाला था और वो आपका पीली आंखों वाला दुशासन हाथी पर सवार होकर अनेकों सेनाओं से घिरा हुआ व्यूह के पृष्ठ भाग में था। उसके पीछे दुर्योधन था जिसकी रक्षा के लिए उसके भाई मद्र और कैकेयी वीरों की सेना भी थी और अश्वत्थामा कौरव सेना के प्रधान महारथी मतवाली गजराज शूरवीर म्लेच्छ ये दुर्योधन की रथ सेना के आगे पीछे चल रहे थे। तब वहां युधिष्ठिर ने आवाज लगाते हुए कहा, अर्जुन ये देखो सामने कौरवों की विशाल सेना, व्यू कैसा बनाया है, अब तुम भी हम बताएं वैसा करो जैसी आपकी आज्ञा, कि तुमको भी एक ऐसा ही व्यू बनाना चाहिए। फिर युधिष्ठिर बोले कि तुम कर्ण के साथ, भीमसेन दुर्योधन के साथ, नकुल वृषसेन के साथ, सहदेव शकुनि के साथ युद्ध करें, शतानिक का दुशासन के साथ, सात्यकी का कृतवर्मा के साथ, धृष्टद्युम्न का अश्वत्थामा के साथ, मेरा कृपाचार्य के साथ युद्ध होगा, द्रौपदी के सभी पुत्र शिखंडी को साथ में लेकर धृतराष्ट्र के अन्य पुत्रों के साथ युद्ध करेंगे, इस प्रकार हमारे पक्ष के प्रधान प्रधान वीर शत्रुओं के वीरों का संहार करना होगा। अर्जुन ने कहा, तथास्तु। अर्जुन ने उस समय अपनी सेना के अंदर शंख बजा करके और आगे के लिए अपनी सेना को आदेश दिया। महारथी अर्जुन को आते देख शल्य ने रणोन्मत्त कर्ण से पुनेगा, कर्ण तुम जिस अर्जुन को देखने के लिए कितना ध्यान नौछावर करते थे कि एक बार कोई मुझे दिखा दे तो ये दे दूं वो दे दूं, वो देखो वो आ रहे, कैसा सुंदर रथ है, कैसे सुंदर घोड़े हिनहिना रहे हैं और देखो कैसे मुस्कुराते हुए कृष्ण अर्जुन को जाने क्या कह रहे हैं, सामने देखो, साथ में ये भी देखो कि तुम्हारे यहां कितना अपशकुन हो रहा है, ये देखो बिना कारण मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, तुम्हारे घोड़े रथ पर बैठे हुए क्या तुमको कंपायमान होते नहीं दिखाई देते, ऐसा लगता है इन अपशकुनों से आज हमारी बहुत बड़ी सेना यहां समाप्त हो जाएगी। आहा, कर्ण शंख चक्र गदा और सारंग धनुष शोभा पाने वाले वक्षस्थल में कौस्तुभ मणि दे दीप्यमान रहती है, वे कृष्ण कैसे हवा से बात करने वाले सफेद घोड़ों को हांकते हुए इधर ही आ रहे हैं, देखो। अरे कर्ण, योद्धाओं को क्या देखते हो, इधर उधर क्या देखते हो, वो शोभा देखो कितनी सुंदर शोभा है। गांडीव धनुष की टंकार होने लगी, अर्जुन के छोड़े हुए तीखे बाण शत्रुओं के प्राण ले रहे हैं, युद्ध में डटे हुए वीर राजाओं के मस्तकों से रणभूमि पटती जा रही है। जरा अपनी सेना की ओर दृष्टि डालो अर्जुन, डालो कर्ण, जो अर्जुन के मार से व्याकुल हो रही है। पांडव वीर दौड़ दौड़कर तुम्हारे पक्ष के राजाओं को पीछे खींच खींच करके बुरी तरह से मार रहे हैं, हाथी घोड़े रथी और पैदलों का समूह नष्ट हो रहा है, बचाओ जाओ अर्जुन के सामने, लड़ो उनसे युद्ध। महाराज शल्य की बात सुनकर के कर्ण ने क्रोध भर के कहा, शल्य तुम्हारी बातें शल्य हैं, चुभती हैं, कांटे जैसी चुभती है। अर्जुन संसप्तकों के साथ युद्ध कर रहा है, मैं बीच में क्यों जाऊं? बस कारण यही कायरों का लक्षण है, इसी को ही कायर बोलते हैं। धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय ये तो मोर्चाबंदी बहुत विलक्षण ढंग से की गई, अर्जुन संसप्तकों को मारने के लिए चले गए, फिर कर्ण ने पांडवों के ऊपर तो धावा बोला होगा ना कि महाराज वहां खूब आपस में युद्ध हुआ। इतना विस्तार से उन्होंने कहा तक सुने, खूब जो है वहां पर युद्ध होने लगा, कभी कर्ण और भीम, कभी नकुल सुसेन, कभी सात्यकी वृषेण। सात्यकी ने तो जो है उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए, वृषेण के तलवार के टुकड़े टुकड़े कर दिए। कई बार भीमसेन से आपका ये कर्ण कितनी बार हार हार करके गया है। कर्ण का और धर्मराज युधिष्ठिर का खूब बड़ा युद्ध हुआ। कर्ण को अपने पास खड़े देखकर युधिष्ठिर की आंखें लाल हो गईं और कहने लगे, ए सूत पुत्र, तू युद्ध में सदा अर्जुन से लाग डांट रखता है, दुर्योधन की हां में हां मिलाकर हम लोगों को अकारण कष्ट देता है। कर्ण तुम बताओ, पांडवों ने तुम्हें क्या कब कष्ट दिया? आज तू जो बहुत बड़े बड़े बल बोल, बहुत बड़े बल के सहारे पर हमसे बड़बोले बात करता है, उन सबका उत्तर दूंगा। कर्ण का और युधिष्ठिर का खूब आमने सामने युद्ध हुआ। युद्ध होते होते अकस्मात कर्ण अचेत हो गया, शल्य के सामने वो गिर पड़ा। राजा युधिष्ठिर ने अर्जुन का हित करने की इच्छा से कर्ण पर पुनः प्रहार नहीं किया, गिर गया, प्रहार नहीं किया। कर्ण की मूर्छा दूर हुई। शल्य ने कहां गए थे, इतनी देर कहां गए थे? युद्ध में तो मूर्छा आई जाती है शल्य, ये मूर्छा तुमको ही कैसे आई कर्ण? तुम तो पृथ्वी के बहुत बड़े योद्धा हो ना, तुम तो कृष्ण और अर्जुन को भी मारने वाले हो, फिर ये मूर्छा? वाह, ऐसी मूर्छा जब हमारे कर्ण को आएगी तब फिर दूसरे योद्धा क्या करेंगे? कर्ण ने कहा, शल्य तुम्हारा काम केवल रथ चलाने का है, युधिष्ठिर के सामने मेरे रथ को करो। एक बार नहीं, कितनी बार युधिष्ठिर के सामने करेंगे? फिर वहां कृष्ण ये युधिष्ठिर का और उनका खूब घमासान युद्ध हुआ। कई लोग योद्धा बीच में आए, कर्ण ने युधिष्ठिर के धनुष को काट दिया, युधिष्ठिर ने कर्ण के रथ उसको ध्वजा को काट दिया। ऐसे एक दूसरे में खूब युद्ध हुआ। अंत में युधिष्ठिर महाराज हार गए और हार करके और वो अपने क्यों घायल हो गए थे तो वो जा रहे थे अपना रथ लेकर के। कर्ण पीछे दौड़वाया और जाकर के युधिष्ठिर के कंधे पर कर्ण ने हाथ रखा और बलपूर्वक पकड़ करके वो खींचना चाहा। इतने में ही कुंती को दिया हुआ वचन याद आ गया। किसको? कर्ण को। और इतने में शल्य ने कह दिया, कर्ण ये महाराज हैं, युधिष्ठिर को हाथ मत लगाओ, मुझे भय है कि कहीं पकड़ते ही ये तुम्हें अपनी दृष्टि से भस्म न कर दे, छोड़ दो इनको। आखिर शल्य के मन में युधिष्ठिर के प्रति प्रेम जागृत हो गया। कर्ण युधिष्ठिर का उपहास करने लगा, जाओ जाओ युधिष्ठिर जाओ, कर्ण के सामने फिर मत आना। युधिष्ठिर जिसका उच्च कुल में जन्म हुआ हो, जो क्षत्रिय धर्म में स्थित रहता हो, वह भयभीत होकर प्राण बचाने के लिए युद्ध छोड़कर नहीं भागा करता। तुम क्षत्रिय धर्म के पालन में निपुण नहीं हो युधिष्ठिर, सब लोग तुमको सत्यवादी कहते हैं, तुम्हारी सत्यवादिता द्रोणाचार्य के समय में सारे संसार ने जान ली है। जाओ कुंती नंदन, आज से लड़ाई में मत आना, शूरवीरों का सामना मत करना, उनके लिए मुझसे अप्रिय बातें भी न निकालना, इतने बड़े समर में तो कभी जाने का नाम नहीं लेना। यदि युद्ध में हम जैसे लोगों से कुछ कड़वी बात कहोगे तो आज जैसी हालत सदा होगी। जाओ अपनी छावनी में जाओ और अपने कृष्ण की स्तुति में लगे रहो और अर्जुन की प्रशंसा करते रहो और कहो कि कर्ण ने आज मेरी ऐसी दुर्दशा कर दी है। युधिष्ठिर बहुत लज्जित हो गए और उस समय सुतकीर्ति के रथ पर बैठकर जाने लगे। कर्ण का पराक्रम देखकर सब लोग बड़े आश्चर्य में डूब गए। जाते जाते युधिष्ठिर ने अपने सेनाओं अपने योद्धाओं से कहा, अरे आप लोग चुप क्यों बैठे हो, मैं तो घायल हो गया, मारो इन कौरवों से युद्ध करो ना, एक के पीछे तुम सब शस्त्र डाल दोगे, एक के पीछे युद्ध नहीं होता है, युद्ध अपने अपने ताकत के भरोसे होता है, चलो। सबको उत्साह दिलाया। इधर भीमसेन खूब बड़े भयंकर युद्ध कर रहे थे और आपके कई पुत्रों को मार दिया। आपके पुत्रों में भीमसेन ने विविधसु को मारा, क्रात को मारा, नंद को मारा, उपनंद को मारा। इस प्रकार से जब वो मारते चले गए तब कर्ण उनके सामने आया। कर्ण आया उनके सामने, भीमसेन के सामने। कर्ण का साथ में युद्ध होने लगा। कर्ण भीमसेन उछल करके कर्ण के रथ पर जा बैठा और उसका रथ चकनाचूर हो गया। कर्ण भी बड़ा बलवान, दोनों लोग अब गदा से युद्ध करने लगे। ऐसे युद्ध करते करते बीच में अकस्मात युधिष्ठिर महाराज आ गए स्वस्थ होकर के। कर्ण और युधिष्ठिर में फिर युद्ध होने लगा। उस दोपहर में जैसा भयंकर युद्ध हुआ ऐसा युद्ध हमने कभी देखा सुना नहीं था। संसप्तकों की सेना का अर्जुन नारायणी सेना के साथ में खूब संहार कर रहे थे। ऐसे ऐसे बाण मारे अर्जुन ने, सर्प बाण मारे, सर्पास्त्र, तो सबके पैर बांध दिए और बांध देने के बाद वो भी जो के त्यों खड़े रहे। उन्होंने अर्जुन के रथ को घेर लिया, रथ के ऊपर चढ़ने लगे। अर्जुन ने अपने पास आने वालों को मारना चालू किया और ऐन्द्रास्त्र का प्रयोग किया। वे सब वहां पर ऐन्द्रास्त्र से पराजित हो गए। इधर कृपाचार्य और शिखंडी का युद्ध हुआ, शिखंडी उसमें पराजित हो गया। धृष्टद्युम्न का और कृतवर्मा का युद्ध हुआ, उसमें वो पराजित हो गया। और कर्ण का और धृष्टद्युम्न का खूब घमासान युद्ध हुआ। और इधर अर्जुन संसप्तकों के साथ में युद्ध करके और अश्वत्थामा के साथ युद्ध करने लगे। अश्वत्थामा घायल होकर वहां से दौड़ गए। फिर दुर्योधन के पास जाकर कर्ण ने कहा, दुर्योधन ने कर्ण के पास जाकर कहा कि हे राधानंदन, अब ये युद्ध स्वर्ग का खुला हुआ दरवाजा है, जो मरेगा वो स्वर्ग में जाएगा और यदि आप लोगों में से कोई जीवित रहेगा तो वो धनधान्य प्राप्त करेगा। अब तो मरने में और मारने में कहीं पर भी अपने को नुकसान नहीं है। इतने में ही अश्वत्थामा वहां पहुंच गया। अश्वत्थामा ने कहा कि मैं आज प्रतिज्ञापूर्वक आपको घोषणा करता हूं कि मैं दुर्योधन का हित करने के लिए और अपने पिता और गुरु द्रोणाचार्य का बदला लेने के लिए धृष्टद्युम्न को अवश्य मारूंगा। ऐसा कहकर के वो धृष्टद्युम्न से भिड़ गया और जब तक उसको नहीं मारूंगा तब तक मैं अपना कवच नहीं उतारूंगा और यदि मेरी प्रतिज्ञा झूठी हो जाए तो मुझे स्वर्ग नहीं मिलेगा। ऐसा करके खूब युद्ध हुआ। इतना युद्ध हुआ अश्वत्थामा का पराक्रम कि उसने धृष्टद्युम्न को घायल कर दिया। और घायल क्या कर दिया, धृष्टद्युम्न को पकड़ करके वो घसीटने ले जाने लगा। ए ब्रह्म हत्यारे, आज तुझे मैं मौत के मुंह में पहुंचाऊंगा, याद रखना यदि अर्जुन तेरी रक्षा में नहीं आएगा तो आज तू युद्ध के अंदर जी नहीं सकता है। धृष्टद्युम्न ने कहा कि अश्वत्थामन, मेरी बात का उत्तर मेरी तलवार देगी, मुंह नहीं देखा, तेरे बाप को जिस तलवार से मैंने मारा है वही तलवार मेरे हाथ में है। ऐसे खूब युद्ध हुआ, तलवार को काट दिया और धृष्टद्युम्न को जाकर उसने पकड़ लिया और पकड़ करके वो यूं प्रहार करके तलवार से धृष्टद्युम्न का सिर काटना ही चाहता था। अकस्मात कृष्ण की दृष्टि पड़ी, अर्जुन ये देखो अश्वत्थामा धृष्टद्युम्न को मारने के लिए उद्योग कर रहा है, ये देखो हाथ का, देखो ये बाण, ये तलवार चलने वाली है, तत्काल अर्जुन ने निशाना लगा करके वो बाण लगाया, बाण के छूटते ही वो तलवार उसकी कट गई और उतने में वहां जाकर अर्जुन पहुंच गया। अर्जुन के पहुंचते ही उन्होंने धृष्टद्युम्न को उठा लिया और अपने रथ में बैठा लिया और आगे निकल गए। अश्वत्थामा देखता ही रह गया। फिर सहदेव ने धृष्टद्युम्न को अपने रथ में बैठा लिया और अर्जुन ने द्रोण कुमार को बाणों से बींधना चालू किया और वो वहां से युद्ध भूमि से भाग गया। भगवान श्री कृष्ण के द्वारा अब जो कृष्ण ने अर्जुन से युधिष्ठिर को दिखाते हुए कहा, पांडु नंदन ये तुम्हारे भाई युधिष्ठिर देखो, इन्हें मारने के लिए आज कर्ण ने कितना कितना प्रयास किया है, अभी भी देखो उनके पीछे जा रहा है, तुम इनके साथ युद्ध करो। ऐसे करके भगवान ने बड़ा उत्साह दिलाया। अब वो भीमसेन बीच में आया। भगवान ने कहा, देखो इस समय युधिष्ठिर महाराज चारों तरफ से घिर गए, उनके पास कोई श्रेष्ठ योद्धा नहीं है, पर खुशखबरी इतनी है कि वो अभी तक जीवित है। बस अब भीमसेन का जाना हुआ। भीमसेन ने दुर्योधन की 3 अक्षौहिणी सेना को आगे बढ़ने से रोक दिया और ऐसा उसने युद्ध किया, सामने ये भी आ गया दुर्योधन। दुर्योधन के सामने कई रथ आए, 300 हाथियों को लेकर, 600 रथों को लेकर आया भीमसेन, ये दुर्योधन। 300 हाथी थे, हाथियों पर हाथी, हाथी पर हाथी, पटक पटक करके उन सबको तो वहां पूरा कर दिया। और सात्यकी ने शकुनी को घायल कर दिया। अर्जुन का सामना अश्वत्थामा से हुआ, उसको घायल कर दिया। शिखंडी ने कर्ण को खूब बाणों से बीन दिया। ये सब इस प्रकार से घायल होते चले गए। इधर दूसरी ओर युधिष्ठिर को आते देखकर आपका पुत्र दुर्योधन क्रोध में भर गया, अपनी आदि सेना को लेकर के आया और उसने युधिष्ठिर पर आक्रमण किया। युधिष्ठिर उस समय पहले तो कुछ घायल ही थे, इतने में ही कर्ण युधिष्ठिर की सेना का संहार करते करते वहां आया। राजा युधिष्ठिर को बड़ा क्रोध हुआ और फिर कर्ण से फिर इन दोनों का युद्ध हो गया। इस प्रकार से युद्ध होते होते युधिष्ठिर पर नाराज अर्धचंद्र वत्सदंत आदि शस्त्रों का प्रहार किया जाने लगा। फिर कर्ण ने इन सबको हंसते हंसते टाल दिया और फिर युधिष्ठिर महाराज रथ के पीछे भाग में जाकर बैठ गए। फिर नकुल और सहदेव उनके साथ में हुए और वे वहां से अपने छावनी की ओर चले। दुर्योधन ने उनका पीछा किया। युधिष्ठिर ने कर्ण की छाती में बाण मारकर बदला तो चुकाया, परंतु वे स्वयं बहुत घायल हो गए थे। उन दोनों को रथहीन देखकर इधर नकुल और से ये खास बात, नकुल और सहदेव ये कर्ण के साथ युद्ध कर रहे थे और नकुल और सहदेव दोनों को ही कर्ण ने रथहीन कर दिया, जमीन पर आ गए। और अब वो मारने ही वाला था कि शल्य को बड़ी दया आई। शल्य ने कहा, कर्ण तुमको तो आज अर्जुन से युद्ध करना था, फिर क्रोध में भरकर धर्मराज से तुम क्यों युद्ध करने लगे? और फिर धर्मराज से युद्ध करते थे तो इन छोटे छोटे बच्चों से क्या युद्ध करते हो? नकुल सहदेव तो बहुत छोटे हैं, इनके साथ युद्ध करने में तुम्हारी कोई बड़ाई नहीं है कर्ण। ये बात सुनकर कर्ण ने कहा, हां आपकी बात बिल्कुल सही है। उसने नकुल और सहदेव को छोड़ दिया और फिर उसके बाद वो दुर्योधन के बचाव के लिए चल पड़ा। इधर बहुत घायल हुए हुए युधिष्ठिर महाराज अपनी छावनी में आ गए, एक पलंग पर लेट गए। उस समय उनके देह से बाण निकाले जा रहे थे, बड़ी भारी पीड़ा हो रही थी। उन्होंने कहा माद्री पुत्रों से कि जाओ नकुल और सहदेव, इस समय भीमसेन बड़ी गर्जना करके साथ युद्ध कर रहे हैं, तुम उनकी सहायता के लिए जाओ, मेरी आज्ञा मानो। इस प्रकार उनकी आज्ञा मानकर नकुल सहदेव दोनों अपने अपने रथ से भीमसेन की सेना में चले गए। कल का जो प्रकरण होगा इसमें बहुत विचित्र प्रकरण होगा।
युधिष्ठिर का अर्जुन का, कल पता चलेगा कि यदि भगवान पांडवों में नहीं होते तो पांडवों में क्या क्या बीतती। आज के प्रकरण को यहीं समाप्त करते हैं। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण 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 नारायण
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण नारायण।